نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مدد مانگتے ہوئے آج پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اوپر ایک نظر ڈالیں گے. غزوہ تبوک ہم سب کے لیے یہ چیزیں بہت ہی سیکھنے کی ہیں. وقت اور حالات بدل بدل کر دوبارہ اسی طرف آ جاتے ہیں جہاں سے شروع ہوتے ہیں, اور جتنا زیادہ آپ کا میرا اس چیز پہ شرح صدر ہوگا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃً حسنہ, اتنا زیادہ ہم اس سے بہترین فائدہ لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کا سورج بھی بنایا اور ہم سب کے لیے ایک رہبر کامل بھی. آئیے دیکھتے ہیں کہ تبوک کا سفر جو کہ بغیر کسی قسم کے معرکے کے پورا ہوا اور اب واپسی کی طرف راستہ ہے, اور یہاں ہم نے پچھلی جو آخری چیز دیکھی تھی, ذرا سا آپ کا ذہن اس تک پہنچا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ لوگوں نے, جو کہ آف کورس بیچ میں تھے, منافقین تھے, اسی دور کے تھے, لیکن جب دل میں کھوٹ ہوتا ہے تو چاہے وقت کا نبی ہی سامنے کیوں نہ ہو, کھوٹ سامنے آ ہی جاتا ہے, کس طریقے سے قاتلانہ حملے کی کوشش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بچایا, اور آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان کو ان کے نام بھی بتا دیے. ظرف ہو تو ایسا ہو کہ آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ کون آپ کا دشمن ہے, لیکن آپ مروت کا تعلق نہیں چھوڑتے تھے. ہم تو آج اپنوں سے روٹھے رہتے ہیں, ہمیں تو اپنے ہی نہیں کچھ زیادہ اچھے لگتے, تو دوسروں کی تو کیا باتیں کرنا. تو آئیے شروع کریں گے. الرحی کو مختوم غزوہ تبوک, مدینہ سے واپسی کے راستے کے مزید کچھ واقعات. وہ سفر جو بڑا ہی جان جوکھوں کا لگ رہا تھا, اور جانے سے پہلے ہی صحابہ کے ایمان اور ان کے حوصلوں کا امتحان ہو گیا کہ کون کھڑی فصلوں کو چھوڑ کر جاتا ہے اور کون اپنے گھر اور اپنے کاروبار کے نام پر اس وقت جب کہ ایک ایک بندے کی ضرورت تھی گھر بیٹھا رہتا ہے. یاد رکھیے کہ مختلف حالات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب یہی دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم میں سے کسی کے اندر کوئی سستی تو نہیں آ گئی, کوئی کھوٹ تو نہیں آ گیا. آج ہم مخلفین سے شروع کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے, لیکن پیچھے رہنے والے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. بک کا پیج 588, اور ٹاپک جس سے آج ہم شروع کریں گے وہ ہے مخلفین. بات جہاں پہ پوری ہوئی تھی وہ کیا تھی کہ تبوک کے لیے رجب میں روانہ ہوئے تھے اور رمضان میں واپس آئے, 50 روز صرف ہوئے, 20 دن تبوک میں رہے اور 30 دن آمد و رفت میں, یعنی آنے اور جانے میں وقت زیادہ لگا. اور یہ آپ کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی. اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ زیادہ دیر ہمارے ساتھ نہیں رہے گا, لیکن نیکی کا موقع, اس سے لبیک کہنے والے تو لبیک کہہ لیتے ہیں چاہے مواقع اور آئیں یا نہ آئیں, اور جن کو مواقع مل جائیں اور وہ اس مواقع کو یہ سوچ کر کہ ضروری تو نہیں کہ ہر نیکی ہم ہی کریں, تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ بعد میں دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کو بہت ریگریٹ محسوس ہوتا تھا. دے فیل ریگریٹ کس بات کا, کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہمیں مختلف مواقع ملے, جو چیزیں ملی تھی, ہم نے اس سے پورا فائدہ کیوں نہ اٹھایا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں اب آپ کے میرے لیے عمل کی کیا چیزیں. مخلفین, یہ غزوہ اپنے مخصوص حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت آزمائش بھی تھا, جس اہل مکہ اور دوسرے لوگوں میں تمیز ہو گئی. اور اس قسم کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا دستور بھی یہی ہے. کیا دستور ہے؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 179, ما کان اللہ لیذر المؤمنین لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ تعالیٰ مومنین کو اسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا جس پر تم لوگ ہو, یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے علیحدہ کر دے. چنانچہ اس غزوے میں سارے کے سارے مومنین صادقین نے شرکت کی, اور اس سے غیر حاضری نفاق کی علامت قرار پائی. पिछले हिस्से में जो वाक़या था कि आपके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया, तो किताबों में सराहत नहीं है कि ये शुरू से साथ थे और फिर बाद में मिले, या फिर वहीं रास्ते में से कहीं उन्होंने मौका देखकर आप पर हमला किया। हम सहाबा किराम के तकद्दस और आपकी शान को दिल में महसूस करते हुए यही कहेंगे कि ऐसे मुनाफिकों ने बाहर से ही आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया होगा, वरना ये तो सऊबतों का सफ़र था, ये तो मुश्किलात का सफ़र था। कैसे वो वहाँ से आकर अपने आप को इस जंग की सारी मुश्किलात में डालते? तो जो सच्चे मोमिन थे उन्होंने तो लब्बैक कहा, और अल्लाह के नबी के इस आखिरी गज़वे को अल्लाह ताला ने एक क्राइटेरियन बना दिया, क्या कि जो इस मुश्किल की घड़ी में जैशुल उसरा में और फी सातिल उसरा में शामिल हो गया वो है उलाएकहुमुस सादिकून, सच्चे लोग। लेकिन इसे गैर हाजिर रहने वाला निफाक की अलामत अपने अंदर ढूंढे, क्योंकि जब इस्लाम को ज़रूरत हो तो उस वक्त अगर एक इंसान काम ना आए तो आगे पीछे क्या फ़ायदा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको कोई ख्वाब आ गया, कोई आपके घर में बला आ गई, आप उसको टालने के लिए तो बकरा भी ज़बह करने को तैयार है, बड़े बड़े चंदे देने के लिए भी उस वक्त आप फिरते हैं कि कोई ले ले ताकि ये बला टल जाए, और इसके बरक्स कभी किसी को शायद एक रोटी की ज़रूरत हो और आप ना दें। दीन को आपके वक्त की आपके माल की ज़रूरत हो और उस वक्त आप मसरूफ़ हों, ये इम्तिहान होता है। अपने लिए भी लिखिएगा, हमें अपने ऊपर कोई खुशफहमी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ये सच है कि एक वो काम होता है नेकी का जो हमें सूट करता है और हम करते हैं, और एक वो काम होता है कि जो हमें सूट नहीं करता। हमारे अपने हालात सूटेबल नहीं होते, हमारे सरकमस्टांसेस ठीक नहीं होते, लेकिन उस वक्त इस्लाम को आपकी ज़रूरत है, उस वक्त आपके दीन को ज़रूरत है, आपके इस काम को आपकी ज़रूरत है, तो आम हालात की नेकियां आपको मुझे अजर देती हैं, ख़ास हालात की नेकियां हमें ईमान देती हैं, और यही ईमान फिर कैश होकर मज़ीद नेकियां करने का फ्यूल बनता है। ये चंद जुमले दिल से बोल रही हूँ, आप भी दिल पे लिख लीजिए। कदम कदम पे आजमाए जाएंगे इस रास्ते में। ये जो पहले से शर्त लग जाती है ना कि कुरान पढ़ा हो इंसान पूरा खूब जम के फातिहा से नाज तक, फिर इसने नूरुला नूर किया हो, फिर ये हिकमतुल बालिगा से गुजरे, ये कोई सज़ा नहीं होती, ये आपके कदमों को जमाने के लिए बिल्कुल वही कोशिश होती है कि जो किसी भी दरख्त के ऊपर फल लगाने से पहले फितरतन अल्लाह ताला करते हैं। छोटी सी एक कोंपल निकले पतली सी डंडी पे, फल लग जाए तो कोंपल टूट जाएगी, वो तो पाँव में ही आ जाएगा। उस फल की हिफाजत के लिए आप देखिए कि अल्लाह ताला इंसान के कद से ऊपर रखता है उसको, नीचे हो तो बच्चे छोटे बड़े इर्द गिर्द से वो सारे कच्चे फल तोड़ दिया करें, और ऊंचा इसलिए भी दरख्त को अल्लाह ताला करता है कि आंधियाँ आएँ तो ये दरख्त उसके उतार चढ़ाव की वजह से पक्का हो चुका हो। ज़िंदगी में जब भी आजमाइश मुश्किल की आंधी चले, समझ लीजिए इसके पीछे को खैर है, अल्लाह ताला आपको उस तक पहुँचने का रास्ता दिखा रहे हैं। तो लिहाजा ये एक क्राइटेरियन था और इस पे वो पूरे हुए जो पहले से तैयार थे, जिन्होंने अपनी डिक्शनरी में ये लफ्ज़ रखा ही नहीं था कि हमें सूट करता है कि नहीं। ज़रा सा इस जुमले के ऊपर अपने आप को परखें, इससे गैर हाजिरी निफाक की अलामत करार पाई, और आप देखते भी हैं आगे भी देख लेंगे अभी कि जो पीछे रहे क्या ये कहकर या ये सोच कर है कि मुनाफिक हैं और हमारा नाम तारीख में लिखा जाए हम निफाक पे, नहीं एक एक के पास उजर थे। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, याद रखिए लोग उजर के नाम पर निफाक में चले जाते हैं, उजर ही तो हमें माजूर बना देते हैं, हैंडीकैप्ड ऑफ देयर नीड्स ऑफ देयर वॉन्ट्स। एक वो ज़िंदगी है जो आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी, दो बच्चे, खुशहाल घराना, सुबह में नाश्ता कराइए, घर साफ़ कीजिए, एंजॉय कीजिए, सोइए उठिए, शाम को मज़े का खाना बनाइए, और फिर जहाँ दिल चाहे मियाँ के साथ जाइए, बच्चों को आइसक्रीम खिलाइए और घर आकर हंसी खुशी आराम फरमाइए। एक ये ज़िंदगी है, ग्लैमर तो इसमें है, फिल्में ड्रामे तो इसी का सबक देते हैं, मीडिया सारा इसी की तरफ है, मुआशरा सारा हमारा टीचर है इस मामले में, क्योंकि हम सबको यही करते देखते हैं। इसमें भी खैर है अगर इसमें हराम नहीं, फ़राइज़ पूरे हैं, गंदगी नहीं, लेकिन दो ख़तरे हैं ज़िंदगी के। एक तो यह है कि सब हो भी लेकिन कोई शर्त नहीं कि आपको सुकून मिले, कोई कोई ऐसी तकलीफ लग सकती है जो इंसान बर्दाश्त ना करे, और सब कुछ भी ठीक है, लेकिन आई डोंट नो मुझे क्या है, मेरे दिल में कमी है, बेसुकूनी है। और अब सारा दिन खबरें सुनते रहे, उधर जंग लग गई, उधर वायरस आ गया, उधर स्कूल बंद हो गए, अब ये हो गया, अब दूसरी लहर आ गई, अब तीसरा आने लगा है। ये है एक तरफ की ज़िंदगी, दूर से ग्लैमरी लगती है, लेकिन ऐसी ज़िंदगी बसर करने वालों के दिल खुलकर देखिए तो वहाँ कई खौफ हैं, कई अंदेशे हैं, कई घबराहटें हैं। इसके बरक्स यही फैमिली है, दो बच्चे हैं, शौहर बीवी, ये जो सब कुछ कहा है ना, ये सब कुछ होगा, लेकिन इसको ज़रा सा रीस्केड्यूल करना पड़ता है। इन कामों के दौरान भी फिक्र होती है अपने काम की, और पूरी कोशिश करके आप अपने वक्त को सही इस्तेमाल करते हैं कि चलें किसी का भी हक मैं ना ले लूं, और अल्लाह के नाम पे दिया तो वो जुर्म बन जाएगा। इसमें थोड़ी सी फ्रिक्शन है, इसके अंदर परेशानी आती है, लेकिन यही है जाहिद हूँ भी जिहादन कबीरा, यही जिहाद बिन नफ्स है, और यही आगे जाकर फिर माशरे के साथ किताल में बदलता है। इसमें कोई और वादा हो ना हो कि आप कामयाब हो जाएंगे कि नहीं, आपको बहुत ज़्यादा दुनिया में शोहरत मिलेगी कि नहीं, लेकिन दो वादे ज़रूर हैं, लिख के रख लीजिए, दुनिया में दिल के सुकून का वादा, जिसके लिए आज लोग तरस रहे हैं, शराब खाने सिर्फ सुकून पाने के लिए हैं, लोग नशे में धुत कर और जिना की गंदगियों में गुम होकर और घंटों फिल्में देखकर अपने गम गलत करते हैं। आपको इस काम में सुकून बहुत मिलता है, इत्मीनान, शरह सदर, अपनी ज़िंदगी बामकसद लगती है, आपको खुशी महसूस होती है, आपके अंदर एक अजीब सी खुशी होती है, आप कहते न जाने मुझे क्या मिल गया, कैसे खोल के बताऊं कि मेरे सीने में क्या है, मुझे अंदर से एक ठंडक क्या महसूस हो रही है। और दूसरी चीज़, अल्लाह ज़ाया नहीं करता, मैं आप किसी के बारे में दावा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी चीज़ है वो लीस्ट, कम से कम चलिए ना बने आप असाबिकून अलवलून, कह लीजिए कि असाबिकून असाबिकून नहीं इसमें शामिल हुए, लेकिन जन्नत मिल जाएगी, अल्लाह फरिश्तों के सामने कह देगा था ये मेरा है, ये मेरा, मुश्किलें सहता था मेरे लिए, कोशिशें बड़ी करता था लेकिन इसे होता कोई नहीं था काम, ये मुझे पता है, ठीक नहीं करता था, लेकिन चलो मैं कहता हूँ ना इनको आला जन्नतों में डालो, ना दो इनको फिर दोस्त, ना इनको नबी के साथ वाली बिल्कुल जन्नत दो, लेकिन इनको कम अज़ कम जन्नत मिल जाए, क्योंकि ये खोटा नहीं था, ये खरा था। आप जब किसी को अपना बन के दिखा देते हैं ना, तो अंधा एतमाद करता है, और याद रखिए जो आप पे अंधा एतमाद करे, कभी उसके एतमाद को ना तोड़िए, क्योंकि वो टूटने से हो सकता है कि किसी का घर टूटने से और कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग गिरने से ज़्यादा शोर मच जाए, इसलिए ज़िंदगी में एक दुआ करके अल्लाह से इस रास्ते पे चलते ही जाया करें कि अल्लाह अब अगर तूने हमारी ये पहचान बना दी है ना, तो अब हमें मरते दम तक जुदा ना करना, शर्मिंदा ना करना कि अच्छा वो थे ये थे। तो जो मुनाफिक होता है ना, वो मफादात का बंदा होता है, हम सोचें हम किस में हैं, जब मुझे सूट करता है तब, आज कितना कॉमन जुमला है, एक मीटिंग का टाइम रखना हो, गजवा तो दूर की बात, जंग तो दूर की बात, तीर तलवार तो दूर की बात, सिर्फ चंद चीज़ें इधर से उधर मूव करनी हो, फर्नीचर मूव करना हो, हम कहते हैं ये मुझे सूट नहीं करता, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, आज मेरी अपॉइंटमेंट है, पता चले बाद में वो ब्यूटिशियन की अपॉइंटमेंट थी, जहाँ आपने जाकर कोई आपने अपना ब्यूटी सैलून लेना था, ठीक है कोई हर्ज नहीं है, लीजिए हलाल चीज़ों में कोई हर्ज नहीं, लेकिन दीन की कीमत पे नहीं, दीन को छोड़कर दुनिया लेना ये बेसकूनी और परेशानी की बात है। तो लिहाजा या तो फिर सच्चे मोमिन थे या फिर निफाक था, चुनाचे कैफियत ये थी कि अगर कोई पीछे रह गया था और इसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाता, तो आप फरमाते कि इसे छोड़ो, अगर इसमें खैर है तो अल्लाह इसे जल्द ही तुम्हारे पास पहुंचा देगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अल्लाह ने तुम्हें इससे राहत दे दी है। इस जुमले पे गौर करिएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा इसमें से। कभी कभी कुछ लोग किसी वजह से हालात के दबाव पे, अपनी ज़िंदगी में कॉप ना कर पाने पे, या कोई गलत फहमी आने पे, कोई शक कोई शुबा आ जाता है दिलों में, आपको छोड़ जाते हैं, या दीन के काम से पीछे होकर कोई जॉब मिल जाती है, किसी का बच्चा हो जाता है, कोई 101 वजह बनती है, याद रखिए अगर उसमें खैर है वो ज़रूर पलटेगा, ये वादा इसमें अल्लाह का, क्योंकि खैर वाला कभी बेखैरा नहीं रह सकता। जब आप एक टीम के साथ मिलके काम करते हैं, जब आप एक गिरोह का हिस्सा होते हैं, आपको पूरी प्रोटेक्शन मिलती है, आपकी एक पहचान, एक प्लेटफॉर्म बनता है, तो आपका तो काम ही आसान है, बस आपको तो वो काम करना है, वरना तो ये सब करना पड़े। तो खैर वाला कभी बेखैरा नहीं रह सकता, इस जुमले को लिख लीजिए। जिसमें खैर होती है, अल्लाह उसी दिल के ऊपर खैर लेने वाले वो सारे मराहल डालते हैं ताकि उसकी खैर बाहर आ जाए। और बिलफर्ज अगर वो अंदर से खोटा था, वो आपके उस कॉज से संजीदा ही नहीं था, बज़ाहर तो सब लगता वही था जो सच के साथ है, लेकिन उसमें कोई और आदत थी, कोई और बात थी, वो हो सकता है उसकी हमदर्दियाँ किसी और से आपसे ज़्यादा हों। तो फिर शुक्र कीजिए, अल्लाह ने आपको ज़हनी अज़ियत से बचा दिया। देखिए ना, जिससे उम्मीद हो और वो काम ना करे, अज़ियत तो होती है ना, और जो उम्मीद ही ना दिलाए उसे आपको क्या लेना देना। हमने कभी हमसाये के बच्चे को नहीं डांटा, डांट पड़ती है तो अपने बच्चे को पड़ती है कि जब मैंने पानी मांगा तो तुमने क्यों नहीं दिया। तो दोनों में खैर है, शर्त एक है, ज़ुबानें बंद रहे, कोई एक जुमला ना बोले ना दोनों तरफ से, तो कुछ अरसे के बाद फिर वापस आ जाता है इंसान। तो ज़ुबानों को सी लीजिए, ज़िब्त मौत, बहुत सारे मराहिल आसान हो जाते हैं। गरज इस कस्बे से या तो वो लोग पीछे रहे जो माजूर थे, या वो लोग जो मुनाफिक थे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से ईमान का झूठा दावा किया था, और अब झूठा उजर पेश करके गजवे में शरीक ना होने की इजाज़त ले ली थी, और पीछे बैठ रहे थे या सिरे से इजाज़त लिए बगैर ही बैठ रहे थे, यानी कुछ ने तो इन्फॉर्म कर ही दिया, कुछ वो भी नहीं करते। यहाँ एक जुमला लिखिएगा, आपके काम आएगा इंशाल्लाह अगली ज़िंदगी में। देखिए, पहले एप्लीकेशन दी जाती थी, हम स्कूल्स में जब पढ़ते थे तो एक एप्लीकेशन लिखी जाती थी, आई बैग टू से दैट आई कैन कम टू स्कूल बिकॉज ऑफ दिस दिस अर्जेंट टास्क, या एक सिक लीव होती थी। एप्लीकेशन मीन टू अप्लाई, अब क्या है इनफॉर्म, फर्क हो गया। एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो जाना पड़ेगा। एक एम्प्लॉय छुट्टी तलब करता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन या उसका जो भी काम बिजनेस है, जो भी ओनर है, वो उसको इजाज़त दे ना दें, कह दें नहीं भाई सॉरी, पहले ही दो लोग छुट्टी पे, आप नहीं जा सकते, और आज तो बहुत ज़रूरी काम है और ये वो, तो उसको रुकना पड़ेगा। और इन्फॉर्म क्या है, मैं आज नहीं आ रही। देखिए जुमला लिखिए, आपने अगर ज़िंदगी में बेहतरीन अंसारुल्लाह बनना है तो आज से एक जुमला अपने लिए लिख लें, कभी ये ना लिखिए कि मैं नहीं आ रही। ये तो आपने हुक्म दिया, फैसला सुना दिया, बल्कि आप इस जुमले को बदलिए, और बदल के ऐसा जुमला पेश कीजिए कि ये खबर ना हो, अगले को आपकी पोजीशन इतनी क्लियर समझ आ जाए वो खुद ही कह दे कोई बात नहीं सिस्टर, आप आराम कीजिए। अच्छा हुआ आपने एक दिन पहले बता दिया, अच्छा हुआ आपने चले बता तो दिया, हम तो इधर आपके इंतज़ार में, हर तरह के हालात हो सकते हैं, ज़िंदगी, मौत, सेहत, बीमारी, और जो फिर ना आ सकें तो जो जिम्मेदारान हैं उनको कभी उनके बारे में बदगुमान नहीं होना चाहिए, बल्कि दुआ करें, उज़र ढूंढें, 100 उज़र ढूंढें, और फिर कह दें हमें नहीं पता उस बेचारे की क्या मजबूरी थी। और इस तरीके से याद रखिएगा, जब लोगों को कोई काम अपना काम लगता है तो फिर वो आपके लिए नहीं करते, वो अपने दिल के लिए करते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ, कुछ ने बता दिया, कुछ ने नहीं बताया, और वो भी इजाज़त लेते थे हालांकि दिल में खोट था। आज इजाज़त लेना अच्छे नहीं लेते, वो भी बताते हैं, बात तो साइड की है, लेकिन एक सास की बात याद आ गई। बहुत ही अच्छे महज़ब माहौल वाले लोग, जब उनके बेटे की शादी हुई तो बेटा बहू ऊपर थे, ये नीचे वाले फ्लोर में थी, ये उस बिरादरी का रिवाज भी था। तो बहू को कहने लगी कि बेटा तूने जब भी अपने मियाँ के साथ कहीं जाना होगा ना तो तुम आना मेरे पास, तो आके कहना अम्मी हम जाएं, मैं तुझसे वादा करती हूँ मैं तुम लोगों को कभी रोकूंगी नहीं। और इसके बरक्स अगर तुम ये कहो कि हम जा रहे हैं, तो ये तहजीबन अच्छा जुमला नहीं है कि आप बड़े को सिर्फ इत्तला दे रहे हैं कि हम जा रहे हैं, और गई तो जा क्या, पहुंच के भी नहीं इत्तला करते, लोग ही बताते हैं कि वो जा चुके हैं, अल्लाह ना करे हम में से कोई ऐसा हो। तो देखिए, ये वो सहाबा का किरदार है कि जिन्होंने नबी के हाथों से तरबियत पाई थी। जब हम ढीले होने लगते हैं, रिलैक्स होने लगते हैं, शुरू में तो एक एक बात पे 10 दफ़ा बात करके पूछते, मशवरे करते, और ज़रा से हम हाथ अपना चल जाता है, फिर हम कहते हैं पूछने की क्या, बताने की भी ज़रूरत नहीं, कोई और ही बता देगा। तो ये चीज़ों के बगैर दीन का काम नहीं चलता। सहाबा किराम ठुकी हुई मोहरें थी, और यही मैं हमेशा सोचती हूँ क्या चीज़ उनको जमाती थी। एक तो अंदर ईमान था और साथ तरबियत बड़ी खूबसूरत थी, तज़किया भी था। ऐसे ही लोगों में से तीन लोगों की कहानी सुनिए। तीन आदमी ऐसे थे जो सच्चे और पक्के मोमिन थे, और किसी वजह जवाज़ के बगैर पीछे रह गए थे। किसी इन्हें अल्लाह ने आजमाइश में डाला और फिर इनकी तौबा कबूल की। इनकी तफसील यह है कि वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए तो हसबे मामूल सबसे पहले मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए। वहाँ 2 रकत नमाज पढ़ी। यानी जब आप सफ़र से वापस आते तो सीधा घर नहीं जाते थे। अलग हदीस से पता चलता है कि घर में किसी बच्चे के हाथ पैगाम भेज दिया जाता कि वो आ गए हैं, ताकि घर वाले अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लें। आप मस्जिद में आते, वैसे भी अल्लाह के घर में अपने घर से पहले जाना यह हर अल्लाह वाले को अच्छा लगता है। खैर, 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर लोगों की खातिर बैठ गए। हम हो तो आने के बाद 1 हफ़्ता आए ही ना, नहीं सफ़र की थकन चल रही है, जेट लॉग चल रहा है। भई आप तो पिछले हफ्ते आ रहे थे। नहीं, आ तो हम गए थे, बस अभी थकन बड़ी थी। क्या अल्लाह के नबी को थकन नहीं थी? जब दिल में अपने घर और अल्लाह के घर में कोई फ़र्क नहीं होता ना, तो बंदे को हमेशा पहले अल्लाह के घर में जाना अच्छा लगता है। आप देखिए कि जब आप उमरा या हज करते हैं ना, तो जिस वक़्त मक्का से रुख्सत होना आता है तो उस वक़्त एक तवाफ़े विदा करते हैं। वो इसी बात की अलामत है कि कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह, मैं जा तो रही हूँ लेकिन मेरा दिल इधर ही है। मेरा दिल दिमाग तेरे इस घर के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन आई हैव टू गो, कैन आई गो प्लीज़। ये है तवाफ़े अलविदा। अल्लाह के नबी फिर लोगों की खातिर बैठ गए। जा रहा है, आप देखिए 2.25 महीने का सफ़र था। इतने दिन के बाद मुलाकात हुई होगी, कितना अच्छा लगा होगा उन लोगों को जो आपको इतने दिन भर देख रहे थे। और इधर मुनाफिकीन ने, जिनकी तादाद 80 से कुछ ज़्यादा थी, 80 मोर देन 80, आकर उज़र पेश करने शुरू कर दिए और कस्में खाने लगे। आपने इनसे इनका ज़ाहिर कबूल करते हुए बैत कर ली और दुआए मग़फ़रत की, और इनका बातिन अल्लाह के हवाले कर दिया। ये है प्यारा सा एक किरदार। लीडर हमेशा लोगों के लिए कॉम्पनसेटिंग होता है, रिलैक्सिंग, ताने नहीं देता। जिस वक्त एक बंदा मजबूरी में जो फंसा हुआ है, तो आप उसको रोक कर कर भी क्या लेंगे? वो इधर होगा, उसका दिमाग कहीं और होगा। देखिए, ये ऐसी बातें हैं ना कि वो कहते हैं कि दिलों में रहने की जगह है, रहने की बेहतरीन जगह लोगों का दिल है, ताकि आप उनकी दुआओं में हों, खैर ख्वाही में हों। और बहुत कुरेद नहीं करते थे, जो आता कि आप कहते गए, दुआ करते गए, और अल्लाह जाने और बंदा जाने। बे अल्लाह को पता है आप कितने मजबूर, आप कितने माजूर, अल्लाह ताला मेरे से ज़्यादा आपको जानता है। बाकी रहे तीनों मोमिनीन सादिकीन, यानी काब बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु, मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। तो इन्होंने सच्चाई इख्तियार करते हुए इकरार किया कि हमने किसी मजबूरी के बग़ैर गजवे में शिरकत नहीं की थी। यानी कोई मजबूरी नहीं थी, जस्ट डिली डैली, जस्ट बिकेम रिलैक्स्ड। हमने सोचा अच्छा देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन हमें क्या पता था कि अब ये नेकी का मौका हमसे अगर चला गया तो फिर ये मौका कभी फिर नहीं आएगा। और याद रखिए, जो मौका गया सो गया, और बहुत सारे आ जाएंगे, वो भी अगर आपने ओके कर लिए और आपने उसके ऊपर अपने आप को रख लिया तो और बात है, लेकिन अगर आपने नेकी के किसी भी मौके को इस तरीके से ज़ाया कर दिया, वो गया, वो दोबारा नहीं आएगा आपके पास, नेवर एंड नेवर विल कम बैक। और होगा, वो नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ भी है। तो अल्लाह के नबी ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे। और एक साथ बात बताऊँ, कुछ लोग होते हैं वो ना भी जाएं तो इट्स ओके, फिर के हर वक्त हर बंदा थोड़ी होता है। ऐसे लोगों के साथ बहुत जिरह और तादील नहीं करनी चाहिए, बस अच्छा ताल्लुक रखे। हाँ, हमें पता है, कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके होने और ना होने से फ़र्क पड़ता है। आप खुद चेक करिए, और हर बंदे को खुद भी पता होता है। मतलब शागिर्द ना आए 2-4 तो फ़र्क पड़े, लेकिन गुजारा हो जाएगा। उस्ताद ना आए तो फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? ये आप अपना पैगाम, अपना मकसद, अपना आप खुद देखिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को हुक्म दिया कि इन तीनों से बातचीत ना करें। चुनाच इनके खिलाफ़ सख्त बाइकाट शुरू हो गया, लोग बदल गए, ज़मीन भयानक बन गई और कुशादगी के बावजूद तंग हो गई, खुद इनकी अपनी जान पर बनाई। सख्ती यहाँ तक बढ़ी कि 40 रोज़ गुजरने के बाद हुक्म दिया गया कि अपनी औरतों से भी अलग रहें। जब बाइकाट पर 50 रोज़ पूरे हो गए, 2.25 महीने, इतना ही वक्त आपको पता है उधर रहे थे, अभी मैंने बोला भी ये लफ्ज़, ये भी नोट कर लीजिए। इतने दिन घर से निकलकर घर आने तक तबुक का सफर था, उतने ही रोज़ बायकॉट रखा कि चलो तुमने इन पिछले 50 दिन में क्या कर लिया होगा, अब ज़रा इसकी सज़ा दुनिया में देखो कि अल्लाह ने तौबा तो इनकी कबूल की, लेकिन उससे पहले का वक्त ज़रा सुनिए सूरह तौबा 118 वाले सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू। और अल्लाह ने इन 3 आदमियों की भी तौबा कबूल की जिनका मामला मौखिर किया गया था। खुल्लिफू खल्लफ यो खल्लिफ तखलीफ से पीछे रह जाना। हत्ता इज़ा दाक़त अलैहिम अल-अर्ध बिमा रहबत वदाक़त अलैहिम अन्फुसुहुम वज़न्नू अल्ला मलजा मिन अल्लाही इल्ला इलैह थुम्मा ताब अलैहिम लियतूबू इन अल्लाह हुव तव्वाबुर रहीम। यहाँ तक इनकी जान भी इन पर तंग हो गई और उन्होंने यकीन कर लिया कि अल्लाह से भाग कर कोई जाए पनाह नहीं है मगर उसी की तरफ। फिर अल्लाह इन पर रजू हुआ ताकि वो तौबा करें। यकीनन अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला रहीम है। यानी जब अपने ही ना बोलें, आप देखिए लंबा वाक्य जाके बुखारी में पढ़िए, जिधर जा रहे हैं कोई सलाम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा, मुंह फेर लेते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको देखते, लेकिन जब ये उनको देखते तो आप अपना चेहरा दूसरी तरफ करते। यानी दिलों में प्यार था लेकिन ऊपर एक गुबार आ गया, एक कर्टन आ गया। आप कहीं जाए और सारी महफिल में आप ऊंची आवाज़ से सलाम करें, एक भी ना वालेकुम करें, बैठेंगे वो? आप क्लास में आए और कोई आपकी तरफ देखे ना, जाएंगे अगले दिन? आप पढ़ाना चाहें, लोग आपसे मुंह फेर के बैठ जाएं, पढ़ाएंगे आप? कितना बड़ा इम्तिहान था ये। और मैं सोचती हूँ कि दुनिया में इकरार करने के बाद अल्लाह के रास्ते से पीछे रहने का अगर ये नतीजा है तो आखिरत में क्या होगा उन लोगों के लिए। बड़े दिल पे हाथ रख के सुनिए कि जो सारी सहूलतों के बावजूद, सारी आसाइशों के बावजूद, सारी नेमतों के बावजूद, सारी मवाफ़कत के बावजूद दीन से पीछे रहते हैं, दीन के काम से पीछे रहते हैं, दीन के नाम से पीछे रहते हैं। उनको ना सीखना है ना सिखाना। और एक जुमला यहाँ लिख लीजिए, बस दफ़ा मजबूरियों के पर्दे में हमारी मुनाफ़कत छुप जाती है। यानी शुक्र अल्लाह का कि कुछ लोग मजबूर हैं, कोई उन पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, शौहर सख्ती करते हैं, सास गुस्सा करती हैं, शुक्र करें वो, क्योंकि अगर ये ना भी होता ना, उन्होंने फिर भी नहीं था वो काम करना, बल्कि एक मजबूरी के नाम पे निफाक छुप गया। तो अल्लाह ने ये एक सख्त इम्तिहान उनका दिया था कि क्यामत तक के लिए। और आज हम सब भी पढ़ लें, आप पीछे रहकर कभी सुकून नहीं पा सकते, ये लिख के रख लें। बस इंसान सोता है कि उसको सुकून मिले, आप दीन का काम छोड़िए सो जाइए, सुकून नहीं मिलेगा। इंसान खाता है ताकि सैर हो, ताकत मिले, आप दीन के काम को अपने किसी खाने पीने की नज़र कीजिए छोड़िए, सैर नहीं होंगे। यानी जिस मकसद के लिए दुनिया की कोई चीज़ पूरी करने के लिए पीछे हटे वो नहीं मिलेगी, कुछ और मिल जाए तो आपका नसीब अच्छा। तो बीमार रहबत, दुनिया उनके लिए तंग हो रही थी, और जब अल्लाह ने तौबा कबूल की क्योंकि वो तव्वाबुर रहीम है, तो इस फैसले के नज़ूल पर मुसलमान अमूमन और ये तीनों सहाबा किराम खसूसन बेहद खुश हुए। लोगों ने दौड़ दौड़ कर बशारत दी, खुशी से चेहरे खिल उठे और इनामात और सदक़े दिए। दर हकीकत इनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। और ये जो आके आपसे माजरतें कर रहे थे ना मुनाफिकीन और बाकी, आप पढ़िए, कहते हैं कि ये मुनाफिकीन अनसार थे। इसी तरह बनी गफ्फार वगैरह आराब में से कुछ लोगों ने माजरत की। 11वें पारे का बिल्कुल पहला रुकूनी के बारे में, 82 थे, कुछ अब्दुल्ला बिन उबई और उसके पैरोकार इसके अलावा भी थे, तो एक खासी बड़ी तादाद थी। और आप जानते हैं कि अब्दुल्ला बिन उबई का इसके कुछ अरसे के बाद इंतकाल हुआ। अगर उसको पता होता ना तो अपनी सारी ज़िंदगी के गुनाहों के कफ़ारे में चला जाता और उसका भी अंजाम अच्छा हो जाता। तो जब अल्लाह तौबा कबूल करे तो ये सबसे बसआदत दिन होता है। सोचिए अपने ऊपर, अपने गुनाहों को याद करिए और कहिए अल्लाह हमारे भी गुनाह माफ़ कर दे, हमारे भी ऊपर वो वक्त आए कि जैसे तूने उनके गुनाह माफ़ करके उनको पाक किया, तो अल्लाह हमें किसी मुश्किल और आजमाइश में डाले बगैर पाक कर दे। इसी तरह जो लोग माजूरी की वजह से गजवे में शरीक ना हो सके थे, इनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, लई साल दुआफाई वला अलल मरदा वला अलल लदीन अला यजिदून मा युनफिकून हरजुन इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही। कमज़ोरों पर, मरीज़ों पर और जो लोग खर्च करने के लिए कुछ ना पाएं, इन पर कोई हरज नहीं जबकि वो अल्लाह और उसके रसूल के खैर ख्वाह हों। असल चीज़ खैर ख्वाही है, नसहू, नासिख, नसीहत। इनके मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने के करीब पहुँच कर फरमाया था, मदीना में कुछ ऐसे लोग हैं कि तुमने जिस जगह भी सफ़र किया और जो वादी भी तय की वो तुम्हारे साथ रहे। इन्हें उजर ने रोक रखा था। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मदीना में रहते हुए भी हमारे साथ थे। आपने फरमाया, हाँ मदीना में रहते हुए भी। दुआ करिए कभी हम वाकई अपने किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से, किसी जायज़ उज़र की वजह से दीन के किसी काम से पीछे रहें तो फरिश्तों के पास और अल्लाह की डिक्शनरियों में हम साथ ही हों, अजर हमें भी मिले। याद रखिए, अल्लाह से ज़्यादा किस को पता है आपके मेरे हालात का। इसलिए अगर आप वाकई सच्चे हैं और आप रोते हैं तो गम ना करें, अल्लाह ताला आपको घर बैठकर भी पूरा अजर देने पे कादिर है। वो तो हमारा इम्तिहान ले रहा होता है कि हम खड़े किधर हैं, हम किस जगह पे हैं। और आप देखिए, कभी भी ये चीज़ें समझ नहीं आती जब तक इसको अपने ऊपर ना लें। हर कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ऐसे हालात बनाकर चेक करता है कि अब कौन किधर खड़ा है, कौन कितने पानी में है, कौन क्या कर रहा है, किसके साथ क्या मामला हो रहा है। और जितना ज़्यादा आप इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेते जाएंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ आ जाएगी कि आपने अपने लिए क्या सौदे किए हैं। आप देखिए कि हमारी ज़िंदगी आज है ना, कल नहीं होगी। काम तो फिर भी होंगे, बच्चे तो फिर भी पल जाएंगे और सो ऑन। जो उज़र, जो मुश्किलात, जो आजमाइशें को हमेशा की नहीं होती, एक वक्त होता है उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अजर का मौका तो गया। अल्लाह ने जो आपकी मेरी सहूलत के लिए जो चीज़ें दी थी वो तो गईं। और कैसे अल्लाह ताला फिर इन सारी चीज़ों में डालकर दुनिया को दिखा रहे हैं। और यहाँ याद रखिए, अल्लाह ने इनको निशाने इबरत बना दिया। अल्लाह चाहे तो फ़ौरन माफ़ कर दे, उसको क्या लगे। आप भी सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो वैसे ही तवाबुर रहीम है। लिखिएगा एक जुमला, जिनसे प्यार ज़्यादा होता है नंबर एक, जिन पे उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, और नंबर तीन, जिनकी इसलाह ज़्यादा करना मकसूद होती है, इंसान उनका मुहासबा ज़्यादा सख्त करता है। वही बात के क्लास में एक स्टूडेंट फर्स्ट आने वाला, अगर वो फेल हो जाए तो बताइए उसकी पकड़ ज़्यादा की जाएगी या वो जो 33, 34, 35 नंबर लेता था पहले भी। आपको उससे क्या लगे। इसलिए कि वो बंदा तो पास भी हो जाए तो बड़ी बात है। तो कभी कभी अल्लाह ताला आपको इबरत बना देते हैं इसलिए कि आपको देखकर दूसरे भी संभल जाएं। और दुआ किया करें कि अल्लाह हमसे कोई ऐसी गलती और भूल ना हो कि जिसकी वजह से हम तेरे और बंदों के सामने कमज़ोर पड़ जाएं। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीन मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वारहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। जितना ज़्यादा सोचते जाएंगे उतना ज़्यादा अल्लाह ताला आपके लिए इन चीज़ों को करना आसान कर देगा। फिर आइए देखते हैं कि और क्या हुआ, कि ग़ज़वे तबूक का असर क्या पड़ा। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन। ग़ज़वा तो जिन हालात में हुआ सो हुआ, इर्द गिर्द इसका असर क्या हुआ। और लिख लीजिए, आपकी फतह या आपकी शिकस्त, दोनों का असर पड़ता है आपके इर्द गिर्द वालों पे, ख़ास तौर पर उन लोगों पे जो आप पे दूर दूर से नज़रें रखे होते हैं। वो आपके अंदर नहीं आते, आ नहीं सकते, वो आपसे इतने बेनियाज भी नहीं रह सकते क्योंकि उनका दिल कहता है कि ज़रा देखें क्या हो रहा है। लेकिन वो ज़रूर, वो कहते हैं ना, तेल देखो तेल की धार देखो वाले लोग होते हैं। तो आइए ऐसे लोगों को ज़रा देखते हैं कि मुसलमानों की इस तारीख साज फतह में जो अल्लाह ने मुसलमानों को दिया वो क्या दिया। ये गजवा जजीरतुल अरब पर मुसलमानों का असर फैलाने और इसे तकवीत पहुंचाने में बड़ा मौसर साबित हुआ। लोगों पर यह बात अच्छी तरह वाज़ह हो गई कि अब जजीरतुल अरब में इस्लाम की ताकत के सिवा और कोई ताकत जिंदा नहीं रह सकती। इसी तरह जाहिलीन और मुनाफिकीन की वो बची खुची आरजुएं और उम्मीदें भी ख़त्म हो गईं जो मुसलमानों के खिलाफ गर्दिशे ज़माना के इंतज़ार में इनके दिल के खानों में यानी निखा खाना दिल में पिनहा थी यानी छुपी हुई थी। यानी मुनाफिक दिल में सोच रहा था कि इस्लाम गया, अच्छा चला ही जाए, अच्छा अल्लाह के नबी की कोई खबर ही आ जाए, और इस तरह की अजीबोगरीब बातें सोचते थे। लेकिन ऐसा होता उनको दिखता नहीं था क्योंकि इनकी सारी उम्मीदों और आरजुओं का महवर रूमी ताकत थी। और इस गजवे में इसका भरम भी खुल गया कि लो ये तो रूमियों से भी जीत के आ गए। इसलिए इन हजरात के हौसले टूट गए और उन्होंने अमरे वाक्या के सामने यानी जो हकीकत थी सिपर डाल दी यानी हैंड्स अप कर दिया, गिव अप कर गए। और अब इस भागने और छुटकारा पाने की कोई राह ही बाकी ना रह गई थी। और इसी सूरत हाल की बिना पर अब इसकी भी ज़रूरत नहीं रह गई थी कि मुसलमान मुनाफिकीन के साथ रिफ्क और नरमी का मामला करें। लिहाजा अल्लाह ताला ने इनके खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार करने का हुक्म सादिर फरमाया। यहाँ तक कि इनके सदक़े कबूल करने, इनकी नमाज जनाजा पढ़ने, इनके लिए दुआ मगफरत करने और इनकी कब्रों पर खड़े होने से रोक दिया। पूरी सूरत तौबा आप पढ़ें ना तो उसमें यही बातें हैं सारी। और उन्होंने मस्जिद के नाम पर साजिश और दसीसाकारी यानी जासूसी का जो घोंसला तामीर किया था इसे ढा देने का हुक्म दिया। फिर इनके बारे में ऐसी ऐसी आयात नाजिल फरमाई कि वो बिल्कुल नंगे हो गए और इन्हें पहचानने में कोई इबहाम यानी शुबा न रहा, यानी उनका सब कुछ खुल के बाहर आ गया, कुछ शक न रहा किसी को। गोया अहले मदीना के लिए इन आयात ने इन मुनाफिकीन पर उंगलियां रख दी, यानी अपनी निशानियों से ये पहचाने जाने लगे कि ये मुनाफिक हैं। इस गजवे के असरात का अंदाज़ा इससे भी किया जा सकता है कि फतेह मक्का के बाद बल्कि इससे पहले भी अरब के वफूद अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आना शुरू हो गए थे लेकिन इनकी भरमार इस गजवे के बाद ही हुई थी। ये भी लिख लीजिए, जब आपको कामयाबियाँ मिलती हैं ना तो लोगों की लाइनें लग जाती हैं, और एक वो वक्त होता है कि आप अकेले दुकान खोले बैठे हैं और कोई आता ही नहीं है। इस्लाम को अल्लाह ऐसी इज्जत दे कि घर बैठे लोग पूछने आ जाए। और आप ऐसा काम कीजिए दीन का, कोने में छुप के भी करेंगे ना, अगर ज़रूरत होगी ना लोगों की तो आप तक पहुँचेंगे। किसी ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर खैर है ना तो जंगल में बैठकर लोगों को बांटना शुरू कर दो, मत फिक्र करो एडवर्टाइजमेंट और उसकी और उसकी। इतने लोग आएंगे कि रास्ते खुद ही बनते जाएंगे, पगडंडियाँ उनके कदमों से बन जाएंगी और रास्ते बन जाएंगे। तो बाज़ दफ़ा ऊंची दुकान फीका पकवान वाली कैफियत होती है, ये काम नहीं करने। सच के साथ, लोगों की इस्लाह के साथ, पूरे दर्द के साथ काम कीजिए, अल्लाह ताला अपने काम खुद ले लेता है। और फिर ये जो बात आपने पढ़ी कि लोग इधर से उधर आने लगे, तो ये भी एक वक्त होता है, यदखुलून फी दीनिल्लाही अफवाजा। ज़्यादा हेडकाउंट ना किया करें, मत गिने बहुत कुछ, अल्लाह पे डाल दीजिए। आपकी ज़िंदगी में नहीं भी ना तो आपके बाद बहुत सारे लोग खैर को पालेंगे। आपका इखलास ज़रूरी तो नहीं कि आपके सामने ही रंग लाए। कुछ पौधे तो कहते हैं कि दादा उगाए और पोता खाए, तो लिहाजा फौरी नतायज को मत तलब कीजिए या नतायज की वजह से हक को बातिल और बातिल को हक से ना खलत मलत कीजिए। इस गजबे से मुतल्लिक कुरान करीम का नज़ूल क्या हुआ? सूरह तौबा की बहुत सी आयात नाजिल हुई, कुछ रवानगी से पहले, कुछ रवानगी के बाद दौरान सफ़र, और कुछ मदीना वापस आने के बाद। इन आयात में गजवे के हालात जिक्र किए गए हैं, मुनाफिकीन का पर्दा खोला गया है, मुखलिस मुजाहिदीन की फजीलत बयान की गई है, और मोमिनीन सादिकीन जो गजवे में गए थे और जो नहीं गए थे इनकी तौबा की कबूलियत का जिक्र है। तो ये था गजवे तबुक, बहुत कुछ है। मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे दूं, जब भी कर लें कोई कैद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे तो तफसीर क्लासेस से पहुँच कर ही नूरुल्ला नूर में पहुँचते हैं और फिर आगे भी जाते हैं, लेकिन ये बात सुनने वाला कोई भी अगर उसने कभी कुरान पाक को तफसीर से नहीं पढ़ा तो सूरह तौबा की तफसीर सुन ले। वेबसाइट और ऐप्स पे और यूट्यूब पे एक दफ़ा सूरह तौबा की तफसीर ज़रूर सुनिए। सुनिए इसलिए कहती हूँ कि पढ़ने से बात नहीं समझ आती, सुनने से समझ आती है। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को दुनिया से रुखसत होने से पहले एक बड़ा खूबसूरत तोहफा दिया तबुक की सूरत में, और निफाक वालों का निफाक खुल गया और ईमान वालों का ईमान खुल गया, और इसी के अंदर मोमिनीन की जाने और माले खरीदने की बात, और इसी में साबिकून अलवलून की बातें, अगलों में से भी अगले। अल्लाह हमें भी अपने अपने दौर की इन सारी तारीख और स्याह घड़ियों में, जहाँ चारों तरफ कुफर और इल्हाद फैला, अपने इस दीन के लिए शमे जलाने वाला बना दे। इसके बाद सन 9 हिजरी के बाद अहम वाक़ियात हैं, ऐसी 1 2 3 करके देखते हैं कि इस वक्त अब मुसलमान किस स्टेज पे हैं और इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और सन 9 हिजरी बहुत अहम है तारीखी अहमियत के हिसाब से। देखिए मसलन तबूक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद उवैमर अजलानी एक सहाबी थे और इनकी बीवी के दरमियान लियान हुआ, और लियान क्या है आप सब जानते हैं सूरत नूर में, कि जब शौहर या बीवी किसी एक को जिना या बदकारी करते देखे तो ज़ाहिर उसके साथ तो नहीं रह सकता, चार गवाह कहाँ से लाए। तो अदालत में खड़े होकर फिर लियान का अमल होता है जिसमें फिर हमेशा के लिए जुदाई हो जाती है। इस तरह गामदिया औरत को जिसने आपकी खिदमत में हाजिर होकर बदकारी का इकरार किया था रजम किया गया। इस औरत ने बच्चे की पैदाइश के बाद जब दूध छुड़ा लिया तब इसे रजम किया गया था। एक औरत से जिना हुआ, चैन ही नहीं आ रहा जब तक के हद न लग गई। हमें भी ये गम है और उसके जुमले हैं, अल्लाह के नबी गुनाह सोने नहीं देता। हद लगे बगैर मर गई तो आगे जाकर कौन सजा भुगतेगा। देखिए दुनिया में कानून की पकड़ से डरते हुए बहुत सारे जुर्म लोग छोड़ते हैं, कि छोड़ो खाम का टैक्स मार लिया, पकड़े गए तो घर भी चला जाएगा, दे दो टैक्स। आखिरत के लिए क्या ख्याल है, अल्लाह के मामले में हम क्यों इतने गैर संजीदा हैं। असमा निजाशी शाह हफशा ने वफात पाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी, यानी ये भी उसी साल में हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह अन्हा की वफात हुई। इनकी वफात पर आपको सख्त सदमा हुआ और आपने हज़रत उस्मान से फरमाया कि अगर मेरे पास तीसरी लड़की होती तो इसकी शादी भी तुम से कर देता। तो आज के दामाद भी इस पे गौर करें, क्या एक देकर कोई पछता तो नहीं रहा, कहाँ दूसरी या तीसरी। तबुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद रासुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई ने वफात पाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दुआ मगफरत की और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के रोकने के बावजूद इसकी नमाज जनाजा पढ़ी। बाद में वही नाजिल हुई और इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की मवाफ़क़त और तायद करते हुए मुनाफिकीन पर नमाज जनाजा पढ़ने से मना कर दिया। यह किस्सा भी सूरत तौबा में है। क्या बड़ा दिल था नबी का, आज अपने ऊपर ले। अब्दुल्ला बिन उबई का नाम आते ही हमारी तो भवें तन जाती हैं, और कोई ईमान की गैरत हो ना इसका नाम सुन के गुस्सा बढ़ाता। और अल्लाह के नबी ने इसके लिए दुआ मगफरत कर दी, अपना कुर्ता दिया इसको। बेटा सच्चा मुसलमान तो उसका भी नाम अब्दुल्ला ही था। जब बाप का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी के पास आकर कहने लगा कि अल्लाह के नबी मुझे पता है मेरा बाप गलती पे था, कोई भी किसी बात का इनकार नहीं, लेकिन क्या बड़ी बात है, आपकी किसी दुआ या आपकी किसी अमल से इसको अल्लाह बचा ले तो आप अपना कुर्ता दे दें, मैं उसमें अपने बाप को कफनाऊँ। औलाद का तो यही दिल होता है ना कि अब माँ बाप जैसे भी हैं अल्लाह उनको बख्श दे। अल्लाह के नबी ने अपना कुर्ता उतार के कहा ये लो। एक तो आपको यकीन था कि मेरे कुर्ते से कुछ नहीं होना, हर एक का अपना अमल है, अल्लाह कुर्ते में भी बरकत तभी देता है जब अल्लाह चाहे, जैसे हज़रत यूसुफ़ के कुर्ते को देख कर हज़रत याकूब की बिनाई वापस आ गई, लेकिन उसी कुर्ते को देख कर आँखें रो रो के गम से सफ़ेद भी तो हुई थी ना। तो चीज़ों में बरकत जो होती है ना ये अल्लाह के हुक्म से होती है, इवन नबी के भी इख्तियार में नहीं है कुछ बरकत डालना ना डालना, कहाँ किसी वली और उसके बाद के लोगों के लिए हो। और दूसरी बात यह है कि आज लोग जमजम में धो के कफन लाते हैं, ले आइए आपकी मर्जी है, अंदर तो अमल ही होंगे। ये तो ऐसे ही कि अंदर से जली खड़ी चीज़ है, ऊपर आप खूबसूरत कवर डाल के पेश करें, जब कवर खुलेगा पता लग जाएगा आपने क्या किया। और हज़रत उमर की इस्लाम के लिए गैरत भी यहाँ से देखिए और किस तरीके से ये सारे मामले हुए। और आप ये भी देख लीजिए कि अल्लाह ताला कैसे अपने लोगों को इन सारी चीज़ों पर लाता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सन 9 हिजरी में हज हुआ, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ज़ेर इमारत हुआ। सब जानते हैं कि 8 हिजरी तक तो मक्का मुशरिकों के हाथ में था, राइट। 8 हिजरी में फ़तह हुआ, तो उसके बाद जब पहला हज आया तो बहुत से सवाल उठे। ये ऐसे ही है कि जब मुसलमान किसी मुल्क में जाएं तो उसके बाद कोई ऐसा त्यौहार आ जाए कि जिस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल चुके हैं। तो इसी साल ज़िलक़ादा या ज़िलहज्जा में सन 9 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनासिक हज कायम करने की गरज से अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु को अमीरुल हज बनाकर रवाना किया। इसके बाद सूरत तौबा यानी सूरत बरात का इब्तदाई हिस्सा नाजिल हुआ, जिसमें मुशरिकीन से किए गए अहदो पैमान को बराबरी की बुनियाद पर ख़त्म करने का हुक्म दिया गया। इस हुक्म के आ जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हु को रवाना फरमाया ताकि वह आपकी जानिब से इसका ऐलान कर दें। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि खून और माल के अहदो पैमान के सिलसिले में अरब का यही दस्तूर था कि आदमी या तो खुद ऐलान करे या अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द से ऐलान करवाए। ख़ानदान से बाहर के किसी आदमी का किया हुआ कोई ऐलान तस्लीम नहीं किया जाता था। हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु से हज़रत अली की मुलाकात वादिय अर्ज या वादिय दिजनान में हुई, कोई भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, जो भी इसमें बेहतर है, नहीं तो आप सिर्फ अर्ज भी कह सकते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने दरियाफ्त किया कि अमीर हो के मामूर, यानी तुम्हें मेरे ऊपर अमीर बनाकर भेजा गया है या तुम मेरे अंडर होगे। हज़रत अली ने कहा, नहीं बल्कि मामूर हूँ, यानी आप ही बड़े हैं, मुझे तो अल्लाह के नबी ने आपकी हेल्प के लिए भेजा, आई एम योर हेल्पर। क्योंकि अरबों ने मानना नहीं था अबू बकर की ज़ुबान से जब तक अल्लाह के नबी के ख़ानदान का शख्स न होता जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे। फिर दोनों आगे बढ़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने लोगों को हज कराया। जब 10वीं तारीख यानी कुर्बानी का दिन आया तो अली बिन अबी तालिब ने जमरा के पास खड़े होकर लोगों में वो ऐलान किया जिसका हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, यानी तमाम अहद वालों का अहद ख़त्म कर दिया और इन्हें 4 महीने की मोहलत दी। इसी तरह जिनके साथ कोई अहदो पैमान नहीं था इन्हें भी 4 महीने की मोहलत दी। अलबत्ता जिन मुशरिकीन ने मुसलमानों से अहद निभाने में कोई कमी न की थी और ना मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी की मदद की थी, उनका अहद उनकी तय करदा मुद्दत तक बरकरार रखा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सहाबे कराम की एक जमात भेजकर ये ऐलाने आम कराया कि आइंदा से कोई मुशरिक हज नहीं कर सकता और ना कोई नंगा आदमी बैतुल्ला का तवाफ़ कर सकता है। ये ऐलान गोया कि जज़ीरतुल अरब से बुत परस्ती के ख़ात्मे का ऐलान था, यानी इस साल के बाद बुत परस्ती के लिए आमदोरफ्त की कोई गुंजाइश नहीं। यह है दो टोक फैसला इस्लाम का। तो गोया के अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मामलात होते गए आप उन सब को अल्लाह की दी हुई रहनुमाई में करते रहे। अच्छे लीडर्स ऐसे ही होते हैं, क्योस नहीं खड़ा करते, खराबियां नहीं डालते, बल्कि खुद से कुछ करने की बजाय कुछ करने से पहले पूछ लेते हैं। और ये वो चीज़ें होती हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलता है वो हमेशा चलता है, और जो बीच में रह जाता है वो रह जाता है। आप जिन मुल्कों में भी हों देख लीजिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें तो आपको कोई ख़तरा नहीं, लेकिन जहाँ आप कोई इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करने लगेंगे तो उस वक्त फिर आपके लिए हालात ख़राब हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पूरा हुआ। सुबहानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।